रात को निक सोने के बजाय पूरी रात सुनहरी के ऊपर नज़र बनाए हुए था। उसे उसके जाने का निश्चित समय पता नहीं था, इसलिए वो पूरी रात जागकर उस पर नज़र रख रहा था। सुनहरी सुबह 5 बजे उठी तो निक ने उसी वक्त रॉन को तैयारी करने के बारे में बोल दिया था। जाने से पहले सुनहरी रूपाली को सब कुछ समझा रही थी कि निक जानबूझकर वहां उनके पास गया था। उसे देखकर सुनहरी ने कहा, अरे साहब, आप तो बहुत जल्दी उठ गए। जल्दी उठने की आदत है या जन्नत बाजार में आपको नींद नहीं आई? धीरे धीरे हर एक चीज की आदत हो जाएगी। आप कहीं जा रही हैं? उसे तैयार वो देखकर निक ने पूछा। रूपाली ने कहा, अरे वो ताई, रूपाली की बात काटकर सुनहरी ने बीच में बोलते हुए कहा, मैं वो तीर्थयात्रा पर जा रही थी। निक ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तीर्थयात्रा पर? आप लोग भी जाते हो तीर्थयात्रा पर? अकेले अकेले पुण्य कमाने जा रही हैं या किसी और को साथ में लेकर जा रही हैं? उसकी बात सुनकर सुनहरी ने झिझकते हुए कहा, फिलहाल तो अकेले जा रही हूँ। अच्छा रूपाली, मैं चलती हूँ, तुम मेरे पीछे से जन्नत बाजार का हाल रखना और मेरी जन्नत का भी। याद रखना, ये साहब तो गलती से भी जन्नत के आसपास भी न पाएं। सुनहरी के बोलने का तरीका निक को पसंद नहीं आया। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं है। इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, सुनहरी ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। उसकी वहां से जाते ही निक ने रॉन को मैसेज करके सुनहरी के पीछे भेज दिया। सुनहरी के जाते ही रूपाली ने भी चैन की सांस ली। निक जन्नत बाजार में इधर उधर घूम रहा था कि तभी उसे किसी के तबले और हारमोनियम बजाने की आवाज़ सुनाई दी। उनके साथ में घुंघरुओं की भी आवाज़ आ रही थी। उसे सुनकर निक को थोड़ी हैरानी हुई। वो उस संगीत का पीछा करते हुए जन्नत बाजार में इधर उधर घूमने लगा कि तभी उसे सामने रूपाली दिखाई दी, जो खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी। अब कुछ दिन तक ताई ना आए तो अच्छा है, तब तक मैं इस जन्नत से भी निपट लूंगी। ताई के आने तक मैंने इसे धंधे पर नहीं बैठा दिया तो मेरा नाम रूपाली नहीं। निक को देखकर वो चुप हो गई। निक ने उसके पास आकर पूछा, रूपाली, ये मृदंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है? रूपाली ने जन्नत बाजार के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो यहाँ का सबसे पवित्र स्थान है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ मास्टर जी जन्नत को नृत्य सिखाते हैं, कथक नृत्य। मास्टर जी उस जगह के अलावा पूरे जन्नत बाजार में कहीं कदम नहीं रखते, उसूलों वाले हैं ना थोड़े। मैं वहां जा सकता हूँ? रूपाली ने कहा, हाँ हाँ, जरूर जाइए, आखिर आपकी जन्नत वहीं पर रहती है। जन्नत का घर है वो मंदिर, वो वहीं पर सोती है और वहीं पर डांस सीखती है। निक रूपाली के साथ जन्नत बाजार में बने उस छोटे से घर में गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी हारमोनियम बजाते हुए गाना गा रहा था, जबकि उसके पास में एक लड़का तबला बजा रहा था। जहां जन्नत बाजार में डांस करते हुए जन्नत के कपड़े काफी खुले और भड़कीले होते थे, तो वहीं मास्टर जी के सामने डांस करते हुए जन्नत ने सिंपल सफेद सूट पहन रखा था। उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे जो उसके साथ थिरक रहे थे। निक और रूपाली दूर खड़े होकर जन्नत का डांस देख रहे थे। चोक पुरावो, माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी ये बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी, अरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छवि से दिखूं मैं तो जारी। लगी जीवारो, नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज हमारे द्वारों में डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है प्रियो ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। वाह, सच में ये मेरी गुड़िया है, बिल्कुल उसी की तरह डांस कर रही है, निक ने जन्नत की तरफ देखकर सोचा। वाह वाह गुरुजी वाह, गाना गाया है आपने, आज मेरे पिया घर आएंगे। रूपाली ताली बजाते हुए उन लोगों के पास गई। उसके आते ही गुरुजी ने बजाना छोड़ दिया तो वहीं जन्नत के कदम भी रुक चुके थे। निक भी उसके पीछे पीछे वहां उनके पास गया। उन दोनों को वहां देखकर गुरुजी गुस्सा हो गए और वो हारमोनियम से खड़े हो गए। हमने कहा था ना कि हमारी नृत्य साधना के वक्त यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आना चाहिए, ये पूजा का वक्त है और तुम यहाँ, गुरुजी ने नाराज होकर कहा। अरे नहीं नहीं गुरुजी, आप गलत समझ रहे हो, वो जन्नत बाजार में मरम्मत का काम चल रहा है ना, तो ये साहब यहाँ का हिस्सा देखने आए थे, बाकी आप अपनी नृत्य साधना जारी रखिए, रूपाली ने उनके सामने मुस्कुराते हुए कहा। गुरुजी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और जन्नत की तरफ मुड़कर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब बाकी का नृत्य हम कल सिखाएंगे, हम चलते हैं बेटा, कल फिर आएंगे। उनके जाने से पहले जन्नत ने उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हुए गुरुजी अपने साथी के साथ वहां से जा चुके थे। जन्नत बाजार के उस हिस्से में उस वक्त जन्नत, रूपाली और निक के अलावा और कोई नहीं था। निक के इशारा करने पर रूपाली वहां का दरवाजा बंद करके चली गई। जन्नत उससे कुछ कदम दूर हो गई और इशारे करते हुए कुछ कहा। निक ने उसे पढ़ते हुए कहा, आपने उससे दरवाजा बंद करवाया ऐसे अकेले यहाँ? जन्नत की साइन लैंग्वेज पढ़ने के बाद निक ने जवाब दिया, तुम घबराओ मत, मैं कुछ गलत नहीं करने वाला तुम्हारे साथ, मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जन्नत ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय वो उससे दूर जाने लगी। निक दौड़कर इसके पीछे गया और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। निक के कहने पर रॉन सुनहरी के पीछे गया था, उसके साथ में मिस्टर मुखर्जी भी थे। सुनहरी के पीछे जाने की वजह से रॉन जन्नत बाजार नहीं पहुंच पाया, अरुण वहां अकेले ही पहुंचा। उसको वहां अकेले देखकर रूपाली उसके पास गई। अरे अरुण, अरुण का फेक नाम, साहब आज आप अकेले आए हो, देखो ताई तो है नहीं आज, मैं ही हूँ। वो दूसरे वाले साहब कहाँ हैं, वो नहीं आए? वाह अजीब सा नाम है, रूपाली ने थोड़ी देर सोचा और फिर अटकते हुए कहा, र रो ना ड नहीं, वो आज यूएस गया हुआ है, पैसे चाहिए होंगे ना डील के लिए। वैसे एनजे सर कहाँ पर हैं? अरुण ने इधर उधर देखकर पूछा। आपके बड़े साहब तो जन्नत के पास हैं, वो तो अच्छा हुआ कि ताई नहीं है यहाँ पर, तो उन्हें मौका मिल गया, वरना वो तो जन्नत के पास भी नहीं फटकने देती किसी को। निक के जन्नत के पास होने की वजह से अरुण थोड़ा घबरा गया। अरुण ने अपने मन में सोचते हुए कहा, ये निक भी ना थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता ऐसे, कुछ टाइम देता तो पता चल ही जाता वो लड़की कौन है, अब बस कोई बेवकूफ़ी ना करते। उसे अपने ख्यालों में गुम देखकर रूपाली ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, अरे साहब कहाँ खो गए, आपको भी कोई चाहिए? सुबह सुबह करूँ इंतज़ाम? मुझे उनके पास ले चलो, किसी को डिस्टर्ब करना, आप बोलो तो आपके लिए भी किसी और को। रूपाली ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि अरुण ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लेकर जा रही हो या नहीं? अच्छा ठीक है, चिल्लाओ, कहकर रूपाली अरुण को जन्नत बाजार के मंदिर वाले हिस्से में ले जाने लगी। निक के अचानक पकड़ने से जन्नत और घबरा गई। उसने अपना हाथ छुड़ाया और इशारे करते हुए पूछा, आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? देखिए मैं भले ही यहाँ पर नाचती हूँ, लेकिन आप मुझे गलत समझ रहे हो, वो ये सब करना मेरी मजबूरी है। जैसे जैसे जन्नत इशारे कर रही थी, निक उसे साथ साथ में पढ़ते हुए बोल रहा था, नहीं तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और कुछ नहीं। निक के कदम जन्नत की तरफ बढ़ रहे थे। जन्नत ने इधर उधर देखा और उसे सामने एक चाकू दिखाई दिया।
जल्दबाजी में उसने चाकू से निक पर वार किया, जिससे उसका हाथ कट गया और चोट से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। तभी रूपाली और अरुण भी वहां पहुंच गए। निक ने अपने हाथ को कसकर पकड़ रखा था ताकि वो खून को बहने से रोक सके। उसकी आंखों में आंसू थे, तो वहीं ये सब देखकर रूपाली गुस्से में आग बबूला हो रही थी। रूपाली ने गुस्से में वहां जाकर बिना सोचे समझे जन्नत के गाल पर कसकर एक थप्पड़ लगा दिया। हाय राम, क्या कर दिया लड़की तुमने, बोलते बोलते उसने जन्नत के एक और थप्पड़ लगाया और कहा, हाथ काट दिया, तेरा सिर्फ नाम जन्नत है, तू कोई जन्नत से आई हुई हूर नहीं है जो ऐसे कर दिया। सुनहरी ताई की बातों में मत आना, कभी ना कभी तो जरूर धंधे पर लगाएगी, और तू ऐसे करेगी ग्राहकों के साथ? का टीप लग रहा है, कोई डॉक्टर है पास में? अरुण ने घबराते हुए कहा। रूपाली का ध्यान उसकी बातों पर ना होकर जन्नत की तरफ था। वो कब से इस मौके की तलाश में थी और आज उसे वो मौका मिल गया। तेरी तो आज मैं जान ही ले लूंगी, बोलते हुए रूपाली ने जन्नत के बाल पकड़े और खींचने लगी। दर्द के मारे जन्नत के मुंह से चीख निकल गई, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रुक, तुझे मैं बताती हूँ कि काटने पर कितना दर्द होता है, रूपाली ने जन्नत के हाथ से चाकू छीना और धार वाला सिरा उसके हाथ पर रख लिया। अरुण ने चिल्लाते हुए फिर पूछा, आप इसे मारना छोड़ेगी, डॉक्टर चाहिए हमें? हाँ हाँ चिल्लाओ, यहाँ जन्नत बाजार की गली में कोई डॉक्टर भी मिल जाएगा, तुझे तो मैं आकर देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि कैसे बचती है आज तो मुझसे, कहकर रूपाली उन लोगों के साथ चली गई। जन्नत वहां पर खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। रूपाली अरुण और निक को एक छोटे से क्लिनिक पर ले गई। जन्नत बाजार के बाहर की तरफ एक छोटी सी डिस्पेंसरी बनी हुई थी, वहां पहुंचकर रूपाली जल्दी से डॉक्टर को लेकर आई। डॉक्टर तू पहले इनको देख, इंसाब का बहुत खून बह रहा है, रूपाली ने उनके पास आते हुए कहा। डॉक्टर ने निक की चोट पर खून साफ करके उसकी ड्रेसिंग कर दी। थोड़ी देर उसे वहीं आराम करने को बोलकर वो वहां से चला गया। रूपाली भी उन लोगों को वहीं छोड़कर वहां से जन्नत के पास जा चुकी थी। दर्द हो रहा है ज्यादा? अरुण ने पूछा। हाँ बहुत, लेकिन ये दर्द इस चोट का नहीं है, निक ने नम आंखों से जवाब दिया। पर तुझे भी ऐसे उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, प्रियंका घबरा गई होगी। वो मेरी गुड़िया हो ही नहीं सकती है, वो चाहे कितनी भी नाराज हो, कितनी भी गुस्सा हो, मेरी गुड़िया कभी मुझे चोट पहुंचा ही नहीं सकती। तो इसीलिए तू रो रहा है? अरुण ने पूछा। हाँ, पता नहीं खुश हों कि मेरी गुड़िया इस जगह पर नहीं है, या इस बात का दुख मनाऊं कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है और किस हाल में है, निक ने भारी आवाज में जवाब दिया। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए, देखा ना तुमने रूपाली कैसे जन्नत को मार रही थी, भले ही वो हमारी प्रियल ना हो लेकिन वो भी मासूम है,
तुम्हारी जल्दबाजी के चक्कर में उसे सजा भुगतनी पड़ रही है। वो रूपाली पता नहीं जन्नत के साथ क्या सलूक कर रही होगी, बेचारी कितना हो रही थी, मुझे उससे माफी भी मांगनी है। तुम अब उसके पास नहीं जाओगे, जो बात करनी है मैं कर लूंगा। एक बात अब हमेशा याद रखना कि वो जन्नत है, ना कि प्रियल। निक ने उसकी बात पर हामी भरी और उसके साथ फिर से जन्नत बाजार जाने के लिए निकल पड़ा। उसकी आंखों के सामने बार बार जन्नत का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो उससे बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था और अब उसे जन्नत से फिर से बात करनी थी।